December 6, year 2004, my wife in Chicago, Menja Matkana, in the morning. May I protect your Kushwa? May we, Houston, Vagara, or either Atlanta, Utiaya, Jamato, Kamene Kaha. کہ جو جماعت ہے وہ امام کا بدن ہے, یہ امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے. جماعت چھ مرو انگ چھ, اور جماعت کا جو درجہ ہے وہ پیر کا درجہ ہے. میں اس وقت تو نہیں سمجھا سکتا زیادہ, لیکن پیروں کا کہنا یہ ہے کہ 12 اتھارٹیز ہمارے امام کی ہیں, اس کو بڑا کہتے ہیں, بڑا یعنی اتھارٹی. 12 کلاس سوریہ, 16 کلاس چندرما. یہاں چندرما کا مطلب ہے پیر کا نور, اور بڑا کڑا جو ہے وہ امام کا نور ہے. کڑا کہتے ہیں اتھارٹی کو. اپنے 16 اتھارٹیز میں سے پیر نے 4 کڑا گھت میں رکھی ہیں. اس کے لیے میں نے جماعت کو کہا کہ جو گت ہے, یعنی جب مٹھی کمریا مذہبی اعمال کے لیے جماعت میں بیٹھتے ہیں تو اس گیدرنگ کو گت کہتے ہیں. گت کا جو لفظ ہے سنسکرت ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں جا کے سلامتی ملے. شرن جوانی جگیا, یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. جہاں جا کے سلامتی ملے, پروٹیکشن ملے, اس کو گت کہا گیا. رسول اکرم کی ایک حدیث ہے, اللہ ما جماعت, اللہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. جماعت کے جو 4 کڑا ہیں اس میں ایک کڑا یہ ہے کہ جماعت بیٹھی ہے, مکھی کمڑیا جو ہیں وہ امام کے وکیل ہیں, تو مذہب میں داخل کرنا, مذہب میں کسی نان اسماعیلی کو لانا, قبول کرنا, یہ جماعت کے اندر مکھی کا حق ہے. مکھی اس کی بیعت دیتے ہیں امام کی طرف سے, یہ ایک اتھارٹی ہے. دوسری اتھارٹی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی گت کے اندر آ کے مکھی کا مریا سے معافی مانگتے ہیں, جو پیر کہتے ہیں. تیسری کڑا یہ ہے کہ ہماری جو امیدیں ہیں, مرادیں ہیں, مہمانی ہے, دسوند ہے, جو کچھ بھی ہمیں اپنے مذہب کے اندر ہمیں امیدواری کرنی ہے, تو ہم وہ امیدیں ادھر مکھی کمڑیا کے, جو میں کہتا ہوں مکھی کمڑیا تو اس میں یہ مکھیانی کمڑیا کا پارٹی ساتھ ہے, تو وہ لوگ امام کی طرف سے, پیر کی طرف سے ہماری مہمانیاں, ہمارے ارادے, ہماری مرادیں قبول کرتے ہیں. اور چوتھی کلا, جب ہم گزرتے ہیں تو ہم کو ماں دن کا چھاٹا ملتا ہے, کہ جو ماں دن کا چھاٹا امام کا حق ہے. ہمارے آخرت کے وقت ہمیں گناہوں سے معافی ملے, یہ کڑا, یہ اتھارٹی جماعت کی ہے. تو یہ جو جماعت ہے اس کی یہ 4 کڑا پیر کی ہے. اس کے لیے میں جماعت کو سلام کرتا ہوں. اے مومنوں, میں آپ کو جو ابھی کہہ رہا ہوں وہ मेरी बात इधर से शुरू होती है। सखी महापद केरी वात के ओइक जाने रे जिने सतगुर मिलिया सार सोई पिछाने रे। बोला मैं हाजिर हूँ श्रीवाद पुराने पाक में अल्लाह ने पाक रसूल को फरमाया कि मैं तुम्हें मुकाम महमूद उसकी तुम्हें बख्शिश देता हूं। जो मेराज है वो हकीकत में मुकाम महमूद है। खुदा के नामों में एक नाम है महमूद, ऐ मोहम्मद मैं महमूद हूं और तू अहमद है। रसूल अकरम के नामों में एक नाम अहमद है जिसको हमारे पेशादर दीन ने कुछ निर्णय में कहा कि अहमद में जैसे मीम निकाल डालो तो वो अहद है। और ये एक हदीस भी है अना अहमद बिला मीम, मैं अहमद हूं मीम के बगैर। फिर फरमाते हैं कि अना अरब बिला ऐन, मैं अरब हूं ऐन के बगैर। बाकी क्या रब। ये हदीस आपको शायद हदीस की किताबों में ना मिले। हदीस की किताबें जो हैं वो अमूमन सुन्नी आलिमों की बनाई हुई लिखी हुई है, जैसे कि सुन्नी इमाम बुखारी ने, अबू मुस्लिम ने, अल हाकिम ने, ऐसा सुहासिता जो हैं छह हदीसें इनको ये लोग अहादीस सित्ता सुहा कहते हैं। सुहा यानी सच्ची हदीसें। मैं इस टॉपिक में जाना नहीं चाहता, खाली बयान करता हूं। ईरान के अंदर एक बड़ा प्रोफेसर था जो आजकल इधर वाशिंगटन में रहता है, तो उसने ये हदीस कोट की है मौलाना रूमी में से निकाल के। नबी कहते हैं मैं अरब हूं मुझे रैन के बगैर, तो रब का दावा किया मोहम्मद ने, ऐ मोहम्मद मैं महमूद हूं तू अहमद है। अब वो मुकाम के जहां अल्लाह की मुलाकात हुई उस मुकाम को मुकाम महमूद कहा गया। और ये इशारा हमारे पिछले दिन में महापद, पद कहते हैं सबसे ऊंचा रास्ता, और महा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा। महापद केरी बात, बात यानी उसकी जो बात है, फरमाया कोई कोई जानता है मगर जिसको सतगुरु मिलता है वहां से उसको सीखना मिलता है। जैसे कि मदीना में आगे हुजूर रहे तकरीबन 10 बरस मदीना में निकाले आपने, लोग जो अराकीन थे शरीयत के वो सीख चुके, नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, ज़कात देते थे, हज पे जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे कि जो रसूल के पास और दरबार में आके पूछते कि या नबी हमने नमाज पढ़ी है, ज़कात दी है, हज किया है, या नबी क्या बस इस्लाम पूरा हो गया या इससे कुछ ज्यादा है? तो नबी कहते थे कि हाँ, इससे ज्यादा है। इसी में इस्लाम पूरा नहीं होता। हज़रत इमाम के एक फरमान ने बाबा फरमाया कि मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कि बस मज़हब पूरा हो गया। हम इस्माइलियों ने ऐसा नहीं समझा। ये तो हम दरवाजा देख के दरवाजे तक आए हैं, लेकिन दरवाजा क्रॉस करके अंदर जाके देखें कि क्या है, वो इबादत है, रियाजत है। सूफियों ने यह तरीका मौला मुर्तज़ा अली से सीखा। सूफियों का जो सबसे बड़ा मास्टर है, चाहे सूफी सुन्नी होवे कि शिया होवे, वो अली को अपना मौला मानता है। तसव्वुफ जो है वो रसूल अकरम ने हमें नहीं बताया, लेकिन अली ने बताया। रसूल पाक जो थे वो तंजील के ऊपर, यानी जो कुछ भी वही में आता था वो सिखाते थे, मगर जो उसकी तामील करने की बात थी तो वो इमाम का काम था। हमारे मौला मुर्तज़ा अली लड़ाइयों में ज्यादा रहे, जितना सिखाना चाहिए था उतना शायद न सिखा सके, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर थे, सुलेमान फारसी जैसे, मिकदाद जैसे, अबू ज़र गफारी जैसे, जो मुर्तज़ा अली के फैज से फैज हासिल करते रहे। मगर जब आराम मिला पॉलिटिकल हालत से, तो इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक ने इस सिलसिले में बहुत काम किया। ऐ दोस्त, ये जो महापद है, तरीका उला जो है, जो मारिफत का रास्ता है, ये कहते हैं सतगुरु से सीखो। सखी महापद के और सखी का एक दूसरा भी गिनान है, ये दोनों गिनानों में बड़ी मारिफत की चीजें बताई गई। हकीकत यह है कि जो हमारे इस्माइली तरीके का ये हिस्सा, जिसको हम बैतुल ख्याल कहते हैं, यही सबसे बड़ा हिस्सा है कि जिसकी वजह से इस्माइली तरीका इस्लाम में पैदा हुआ, और वो तरीका मारिफत का तरीका है, जिससे हमें हकीकत की तालीम मिलती है। इसमें क्या है? मोहब्बत, मुर्शिद की मोहब्बत। मुर्शिद की मोहब्बत में से निकल के सूफियों ने जिस तरीके से इल्म हासिल किया, फना फिर शेख, मुर्शिद में फना हो जाओ, मुर्शिद कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, मुर्शिद कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार फरमाते हैं, हम तुम्हारे मुर्शिद हैं, हम दिन को कहें कि ये रात है तो तुम उसको मानो कि वो रात है, हालांकि सूरज निकला हुआ है। मैंने कल की आवाज में भी ये इशारा किया है नॉर्थ में। इमाम कहते हैं कि अगर रात को हम कहें कि इस वक्त दिन है तो तुम समझो कि दिन है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो सिर्फ जाहिरी चीज ही नहीं, उसके अंदर कुछ हकीकत है। जैसे कि अल्लाह ताला ने गुनाहों को गंदगी कहा है, गिलाज़त, उसको कहते हैं जुनूब, जनब जो है, जनब का मतलब गंदी चीज। तो गुनाह चूंकि इंसान के माइंड को गंदा कर देते हैं, तो इसके लिए जहां जहां अल्लाह ने जनब या जुनूब का नाम दिया है तो वो गंदी चीज है, यानी बदी करने से हमारा जो मन है, ख्याल है, वो नापाक होता है। तो लफ्ज़ और है, मतलब और है। यही हाल मुर्शिद का होता है। मुर्शिद कभी कभी इशारे करता है, आमतौर पर मुर्शिद इशारे करता है, खुली बातें नहीं करता। इसलिए जो समझने वाले हैं वही समझते हैं। इमाम फरमाया, देखो तुम याद करो, हाफिज कहता है कि अगर तेरा मुर्शिद तुझे कहे कि शराब में मुसल्ला भिगो के उस पर बैठ कर नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो, क्योंकि जो सालिक तेरा मुर्शिद जानता है तू नहीं जानता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत के जो कुछ भी हुक्म होते हैं वो उसके ऊपर ईमान रख के कबूल किए जाए। मैं आपको एक मिसाल दूं, 4-5 बरस का लड़का है या लड़की है, बच्चा है, हम उसको स्कूल में दाखिल कराते हैं। अब ये बच्चा इधर आया है, बाप ने अब्बा ने कहा कि देख ये तेरा उस्ताद है, तो फिर वो सिखाता है, देखो बेटा ये है ना, ये अलिफ है, हाँ अलिफ है, ये बे है, ये बे है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है। बच्चा इससे इनकार नहीं करता, जो कुछ मुर्शिद कहता है, उस्ताद कह रहा है, बच्चा कबूल करता है। ये पहली बुनियाद है बच्चे की कि वो इल्म हासिल करे। अगर बच्चे ने अपने उस्ताद की बातों को कबूल नहीं किया तो वो इल्म हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद गलत हो जाती है। तो स्कूल में हमको जो सिखाया जाता है हम उसको कबूल करते हैं, ये पहला मुर्शिद है हमारा दुनियावी नजर से। इस तरह से जो मजहब के अंदर जो शेख है, यानी मजहब सिखाने वाला जो आदमी है, उसके सिखाने पे अमल होना चाहिए, कबूलात होनी चाहिए। ये जो कबूल करना है ये एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है। अल्लाह कहता है कि आमंतु बिल्लाह या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान लाने वालो ईमान लाओ। आमंतु बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। तो जी ये चीज जो अगर कबूल हो गई तो चीज आसान हो गई। ईमान की बात के लिए जो अल्लाह ने ये आयत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमंतु बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, वह मलाइकतुहु और उसके मलाइक हैं, फरिश्ते हैं, तो ये भी ईमान लाओ कि भाई खुदा के फरिश्ते भी हैं, तो फरिश्तों को कबूल करो। और रुसुलही और उसके रसूलों पर ईमान लाओ कि अल्लाह ने रसूल भेजे हैं। वकुतुबही और ये भी ईमान लाओ कि खुदा ताला ने दुनिया में किताबें भेजी हैं, जिसको हम सहीफा कहते हैं। आमतौर पर हम ये जानते हैं कि 4 किताबें हैं, लेकिन हकीकत में 4 किताबें नहीं हैं। तौरात जो सबसे पहली किताब मानी जाती है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी सहीफा उतरा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर भी सहीफा उतरा। तो तौरात से पहले मूसा अलैहिस्सलाम के पहले जितने भी नबी रसूल हुए, उनमें से जिन जिन के ऊपर भी सहीफे, जिसको सुहाइफ कहते हैं, उतरे, वो सब के सब तौरात में इकट्ठे किए गए। तौरात से लेके जबूर तक, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक, हजरत मूसा और हजरत दाऊद के दरमियान तकरीबन 1,500-2,000 बरस का फासला है, इसके दरमियान भी बाज नबियों के ऊपर सहीफे उतरे। तो तौरात से पहले, तौरात के बाद, जबूर तक के जो सहाइफ थे उसका एसेंस जबूर में आ गया, और जबूर से लेके इंजील तक यही सिलसिला रहा, और अब रहा कुरान, तो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर फर्स्ट सगुशा से लेके तमाम नबियों के ऊपर जितने जितने भी रसूल नबी जिनको सुहाइफ मिले वो सबका निचोड़ कुरान है। इसलिए कुरान शरीफ को 114 सूरों में तकसीम किया गया। ये निशानी है 114 रसूलों के ऊपर जो सहायक उतरे वो नंबर से 114 लगाया गया। लेकिन कुरान शरीफ में वो सब कुछ नहीं है कि जो रसूलुल्लाह के ऊपर उतरा। नबी के ऊपर तो बहुत कुछ उतरा। अब जाहिर हो रही है थोड़ी सी चीजें, जिसमें एक मशहूर किताब या इसके पहले जो आलिम लोग थे उन्होंने जिक्र किया था कि ऐसी हदीसें भी हैं कि जो कुरान शरीफ या इन हदीसों के अंदर नहीं आती। अहादीस कुदसिया, वो हदीसें कि जो कुदसिया का मतलब यह है कि खुदा ने कही हुई हदीसें। आम हदीसें तो रसूल की हैं, लेकिन अहादीस कुदसिया खुदा ने कही हुई हदीसें कि जो कुरान में नहीं लेकिन मोहम्मद को कही गई। ऐसी चंद हदीसें अहादीस कुदसिया, उसका दर्जा कुरान का है। रूमी ने अपने मसनवी में कुछ जिक्र किए हैं। रसूल अकरम ने भी अपने हदीसों के अंदर अहादीस कुदसिया का जिक्र किया है, जैसा कि नबी कहते हैं मुझे खुदा ने कहा। अब क्या कहा? कि मैं मोमन के दिल में रहता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे खुदा ने कहा कि मैं आसमान जमीन में कहीं समा नहीं सकता लेकिन मोमन के दिल में समा जाता हूं। अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे खुदा ने कहा, तो कुरान में तो ये चीज नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो रसूल पाक ने कहा, मुझे अल्लाह ने यूं कहा। तो मतलब यह है कि खुदा ने बहुत सी चीजें मोहम्मद को कही कि जो कुरान में दाखिल नहीं की गई, वो कलामुल्लाह है। उनमें से ये चीजें कि जो बैतुल ख्याल में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारा बोल, इसमें आसम। रसूल अकरम ने एक फिक्रा बोला और फरमाया इसके अंदर इसमें आजम छुपा हुआ है, लेकिन हुजूर ने जाहिर नहीं किया। इसमें आजम जो है वो फरिश्तों का इस्म है। हर एक फरिश्ते के पास एक इसमें आजम है कि वो इसमें आजम की ताकत से उड़ते हैं। जिस तरह एरोप्लेन उड़ता है इस तरह नहीं उड़ते। पहली चीज तो यह है कि फरिश्ते हमें नजर नहीं आते, इसलिए कि वो नूरानी मखलूकात है। खुदा ताला ने फरिश्तों को अपने नूर में से पैदा किया, लेकिन उनकी हस्ती है, उनका बदन है। एक जगह अल्लाह फरमाता है कि बाज ऐसे फरिश्ते हैं कि जिनके दो पर हैं, विंग्स हैं, दो पर वाले या दो इंजन वाले एरोप्लेन है। फिर अल्लाह कहता है कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि जिनके तीन पर हैं। फिर अल्लाह कहता है कि कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि जिनके चार पर हैं। अब ये जो पर हैं, परिंदे के पर की तरह के पर नहीं है। यहां पर से मतलब है उड़ने की ताकत। किसी को एक लेवल की ताकत है, किसी को तीन लेवल की, किसी को दो लेवल की, किसी को चार लेवल की, क्योंकि फरिश्तों के अंदर जो तबकात हैं और आला दर्जे के जो फरिश्ते हैं उनको अल्लाह ने मलाइकतुल मुकर्रबीन कहा, वो मलाइका के जो खुदा के हुजूर में रहते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, मिकाईल हैं, हजरत इस्राफील हैं, हजरत इस्माईल हैं, ऐसे फरिश्ते जो मुकर्रबीन हैं। इन मुकर्रबीन फरिश्तों के दर्जे जो हैं वो दूसरे फरिश्तों से ऊंचे हैं, क्योंकि इनके पास जो इसमें आजम है वो दूसरे इसमें आजमों से ज्यादा पावरफुल है। आप में से जो बड़ी उम्र के लोग हैं मेरी तरह के जो 60 बरस के ऊपर है और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का दीदार किया है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ज्यादातर बोल देते थे छोटी उम्र में, आदमी बड़ा होता है बोल के ऊपर उसने अमल किया है, प्रैक्टिस करता है। मैं याद करता हूँ अपने बचपन को, 70-75 साल पहले लोग इतने सीरियस होते थे बोल के अंदर कि उनके चेहरों पे वो रौनक होती थी, इबादत का जो नूर होता है वो चेहरे से जाहिर होता है। बगले वो काले रंग का हो गए लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक ऐसी तकवीयत, एक ऐसी शान होती थी कि चेहरे खुशनुमा और अट्रैक्टिव होते थे। और हकीकत में इबादत जो है वो आदमी के ख्यालात को, आदमी की जिंदगी को बदल देते हैं। नूर का असर होता है। अगर शराब पीने का असर आदमी के दिमाग पे होता है तो इबादत का असर उससे ज्यादा पावरफुल है। ये जो फरिश्ते हैं उनके जो तबकात हैं उनके इसमें आजम के हिसाब से हैं, तो यही बात क्या होती थी जब ये हजर इमाम पहले बोल दिया करते थे, अब तो वो सिलसिला बंद कर दिया मौला ने। दो चार साल के बाद आदमी ने प्रैक्टिस की है, थोड़ा आगे बढ़ा है, तो इमाम फरमाया करते थे हजर इमाम भी, तुम दूसरी दफा आओगे तो मैं तुम्हें दूसरा बोल दूंगा। इसको कहते हैं हम लोग चिट्ठी बदलाना। दो चार साल के बाद इमाम आए और हमने इबादत की हुई है उसमें से मजाक चखा हुआ है, तो फिर दोबारा हम जाते हैं और जब अंदर जाते हैं तो हमारे बोल के हिसाब से वहां जो हाजिर मिशनरी होते हैं वो ग्रुप्स करते हैं। तो इमाम आके मिशनरी को पूछे कि ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है। फिर इमाम सबको इकट्ठा करके एक दूसरा बोल देते हैं। बस दफा दो तीन स्टेजेस के बाद नक्श मिलता था। अभी हजर इमाम ने 74 में की गाली के अंदर ये फरमान किया, मैं आज से नक्श बंद करता हूं, क्योंकि नक्श बड़ी मुश्किल चीज है। आमतौर पर जो खोजे हैं इंडिया अफ्रीका के, उर्दू नहीं जानते, अरबी नहीं जानते, और इमाम स्लेट लेके अपने दस्त मुबारक से नक्श लिखा करते थे। जैसे कि अल्लाह, अरबी का अल्लाह लिख दिया, और फिर ये जिनको नक्श की बख्शिश मिलती थी तो वो ये लिखा हुआ हाजर इमाम के हाथ से जिस तरीके से अल्लाह लिखा गया है उसको वो देख के अपने दिमाग में, मेमोरी में उसको याद कर लेते थे। अल्लाह के लिखने का यानी खुशखती के बहुत से तरीके भी हैं। अल्लाह लिखने के अरबी का कोई भी लफ्ज़ है, उर्दू का जो इंसान की हैंड राइटिंग होती है उसके अंदर फर्क होता है। अभी अल्लाह जो है अलिफ लाम लाम, तीन दफा लाम होती है और बाद में हे को ऐसा ऊंचा कर देते हैं, कई लोग उसको ऐसा मरूर देते हैं। तो जिस तरीके से इमाम ने अल्लाह लिखा है उसी तरीके को इंप्रेशन ले लो, और जब इबादत में बैठो, यानी नक्श की बात कर रहा हूं जो आजकल है ही नहीं, लेकिन मैं इसलिए कि ये एक हिस्ट्री भी है, उस तरीके से अल्लाह, जब अल्लाह कहो जबान हिलनी नहीं चाहिए, मुंह बंद हो गए तो भी अंदर जबान हिलनी नहीं चाहिए। लेकिन हम जब कहते हैं मेंटली पुकार कर रहे हैं अल्लाह, तो वो नक्शा हमारे सामने होना चाहिए जो इमाम ने अपने दस्त मुबारक से लिखा है अल्लाह। नक्श के भी बहुत से तबकात हैं। तो ये मैंने बात इसलिए आपको निकाली, पहली चीज तो ये है कि ये चीज लोगों को मालूम नहीं, और मेरी जिंदगी कब खत्म हो गई मुझे पता नहीं। मैं ये चीजें इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये रिकॉर्ड में रहे और किसी को इसमें से पता लगे। हो सकता है हाजिर इमाम किसी को प्राइवेटली ऐसी बख्शिशें दे देंगे और वो देने वाला है। तो ये चीजें मैंने इसलिए कही कि जिस तरह से फरिश्तों के तबकात हैं और उनके तबकात, उनकी ताकत, उनकी नूरी उड़ान की वजह ये कि उनके इसमें आजम ऐसे हैं। तो जो छोटे फरिश्ते हैं, मिसाल दूं अल्लाह के कहने के हिसाब से दो इंजन वाले, दो परो वाले, वो उधर तक नहीं पहुंच सकते कि जिधर तीन परो वाले फरिश्ते जाते हैं। इसीलिए जो इसमें आजम इमाम ने दिया है, इस वक्त तो हजर इमाम ने टाइम देख के चीजें घटा दी हैं। एक जगह हजर इमाम गए अफ्रीका में, 64 आदमी बैठे थे चिट्ठी बदलाने वाले, 1963 की बात है। हजर इमाम ने सबको देखा, 64 आदमी थे, नजदीक बैठे थे, छोटा जमा खाना था। माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से जिसने बॉल भुला दिया है हाथ ऊंचा कर, किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया। सब थोड़े मुस्कुराए। साहब कहते हैं मैं पॉइंट आउट करूं, इससे बेहतर यह है कि तुम खुद याद ऊंचा करो और मुझे मालूम है कि किसने बोल याद रखा है, किसने भुला दिया। तीन चार आदमियों ने हाथ ऊंचे किए। हजर इमाम थोड़ी देर रहे, देखते रहे, फिर माँ बाप कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम हाथ ऊंचे करो, जो बोल भूल गया। तो दो के सिवाय 62 ने हाथ ऊंचे किया। हजर इमाम का मुंह उदास हो गया। 64 में से 62 आदमी भूल गए। बोला उदास हो गया, मुंह सीरियस बन के। सब कहते हैं तुम अपने दुनियावी बाप का नाम नहीं भूले, रूहानी बाप का नाम भूल गए। हजर इमाम को बहुत बुरा महसूस होता है, मैं बोल देता हूं और तुम भूल जाते हो, मतलब ये कि तुम्हें परवाह नहीं है, मेरे भूल की भी परवाह नहीं, इसलिए इसने बख्शिशें बंद कर दी, नहीं देता बोल। यानी शुरू का बोल देता है लेकिन एडवांस बोल नहीं देता, सिवा के इंफरादी तौर पर इंडिविजुअली कोई इमाम के पास जाते हैं तो बख्शिशें देता है, इंडिविजुअली जमातों को बंद कर दिया, हम बोल भूल जाते हैं। और भूलने की एक ही वजह है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करने वाला भूलता नहीं। ए मोमिनो, इस बैतुल ख्याल को सीरियसली लो। मुझे एक डर है, मेरा डर यह है, और मैं मौला के हुजूर में अर्ज करता रहता हूं, जाहिर में भी कभी मिलते हैं तो कहता रहता हूं, मुझे डर यह है कि दिन ब दिन बैतुल ख्याल घटता जाएगा। एक जमाना था इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमान करते थे, 21 बरस की उम्र से घटा के 18 बरस की बोल लेने के लिए। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो गोल्डन जुबली के टाइम पे 36 का जो टाइम था उस वक्त 16 बरस की उम्र इमाम ने कबूल की थी। और मौला एनकरेज करते थे कि आओ बोल ले लो, 16 बरस की उम्र हो जावे बोल ले लो, एनकरेज करते थे। और ये हमारा ये मौजूदा सेठ जो है ये डिस्करेज करता है। आके जब ये बैठता है तो तुम अपनी मर्जी से आए हो, अच्छा तुम्हारे बहन ने, भाई ने, माँ ने, बाप ने तुम्हें बोला कि जाओ बोल दो। देखो ये बहुत मुश्किल चीज है, ये मुश्किल डिसिप्लिन है, आसान चीज नहीं है, इसलिए तुम्हारे कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। अगर अभी मेरे फरमान सुन के तुमको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकूंगा तो हाजिर इमाम कहते अभी चले जाओ, मैं बुरा महसूस नहीं करूंगा। हाजिर इमाम डिस्करेज करते हैं और डिस्करेज करने की वजह सच्ची वजह है, हम लोग बैतुल ख्याल में सीरियस नहीं है। ए मोमिनों, ऐसा कोई दिन गया है कि आदमी ने नींद नहीं की या खाना नहीं खाया? मुश्किल से शायद वो मजबूरी की वजह से है। हम खाना भूलते नहीं, नींद भूलते नहीं, अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजें बिला नागा चलती रहती हैं। बैतुल ख्याल ऐसा है कि जिस तरह हमारे हार्ट के दबकारे चलते हैं, इस तरह बैतुल ख्याल है। हर सांस के ऊपर हमें अपने मौला से, ख्याल से ताल्लुक रखना चाहिए, हर सांस से। इस्माइली मजहब का, हकीकत में जो इस्माइली मजहब का जो दर्जा है तो वो ये बैतुल ख्याल है। बैतुल ख्याल एक नई जिंदगी है। जिस तरह एक आदमी या एक औरत शादी करते हैं तो वो एक नई जिंदगी है, बैतुल ख्याल एक नई जिंदगी है। लेकिन बैतुल ख्याल ख्यालों की जिंदगी नहीं है, ऐसा ही नहीं, हमारी जाहरी जिंदगी के ऊपर भी असर करता है। जो आदमी बैतुल ख्याल के अंदर आता है उसको इस तरह कि जैसे उसने शादी की है और अपनी बहुत सी आदतों को और औकात को यानी वक्त की पैमाइश को वो बदलता है, फिर बच्चे होते हैं और भी तब्दीलियां आती हैं जिंदगी में, बैतुल ख्याल में दाखिल होना ऐसा ही है कि उसका असर हमारी जाहरी जिंदगी पर भी होता है, बातिनी जिंदगी में भी होता है। और बैतुल ख्याल के पहले लेसन्स जो हैं उनमें ये है कि अपने आमाल पाक बनाओ। आमाल पाक बहुत बड़ी चीज है। बैतुल ख्याल का सारा एसेंस ही यही है कि आमाल पाक होंगे। जैसे जैसे पाकीजगी बढ़ती जाएगी तैसे तैसे नूर नजदीक आता जाएगा। नूर जो है वो अल्लाह का नूर है, नूर पाक है, नूर को मौत नहीं, नूर को बीमारी नहीं, नूर में कोई खराबी नहीं। जितने भी दुनियावी जिंदगी की खराबियां हैं वो नूर के नजदीक नहीं है। जहां नूर आता जाता है बदियां, बुराइयां, खराबियां भागती जाती हैं। एक मिसाल दू छोटी सी, बहुत मैला कपड़ा है, साबुन लगा के उसको धो डालो तो थोड़ा लाइट हो जाता है, थोड़ा और वार ज्यादा साबुन लगाओ, वैसा तीन चार दफा साबुन लगाने से कपड़ा जो है वो उजला हो जाता है। बैतुल ख्याल है, नूरानी चीज है और हमारी रूह के थ्रू से हमारी जिंदगी के अंदर उसका असर पैदा होता है। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि हम हाजिर इमाम को बुलाते हैं घर पे, मौला आया तो उसको बैठने के लिए कुर्सी रखी है लेकिन कुर्सी पे कपड़े पड़े हैं, मौला कहां बैठे, कुर्सी खाली करो तो वो आके बैठे ना। यहां मेरा मुराद कुर्सी से दिल है। हम इमाम को बुलाते हैं, हमारे दिल में बदियां, बुराइयां, हसद, खराबियां, गुनाह के ख्यालात, लालच, इस दिल के अंदर मौला कैसे आवे, नूर की बख्शिशें कैसे मिले। ए मोमिनों, हमारे तमाम जिनानों के अंदर, फरमानों के अंदर, तुम्हारे पाक के अंदर तुहारत पाकीजगी बदन की और ख्यालों की, उसको बहुत जोर दिया गया है। पाक बनो, नेक बनो, अच्छे बनो। और इसकी के लिए हर नबी ने, हर इमाम ने, हमारे पीरों ने हमें फरमान किए, अल्लाह की किताबों में यही है। खुदा कहता है मेरे नजदीक तुम्हारे अंदर वो मर्तबे वाला है कि जिसके आमाल पाक है, झूठ बोले, परहेज करे, दगड़ाबाजी करे, बदनजरी करे, और कितनी खराबी, और हम जानते हैं खराबी क्या क्या है, लेकिन हम उसको छोड़ते नहीं और इबादत करने बैठते हैं तो कुछ मिलता नहीं। हमारा ये मजहब फरिश्तों का दीन है, नबियों का दीन है, इस दीन से फायदे उठाओ। हमें एक दिन गुजर जाना है। हमारी यह जिंदगी, मौला ने बहुत दफा हमें याद कराया कि तुम्हारी यह जिंदगी टेम्परेरी है, शॉर्ट टाइम के लिए है, 100 बरस क्या है। एटर्नल जिंदगी का ख्याल करो तो दिनदारों 100 बरस एक मिनट जैसे लगते हैं। मरना है और मौत के बाद हमको ये बैतुल ख्याल काम आएगा। मैं तो कहता हूं जिंदगी में भी काम आता है, सिर्फ मरने के बाद नहीं। एक आदमी नेक है, पाक है, जानबूझ के गुनाह नहीं करता, इंसानी फितरत और कमजोरी की वजह से इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मोमन कभी जानबूझ के गुनाह नहीं करता। और कभी उससे गुनाह हो जाता है तो सख्त पशेमान होता है। ये पशेमानी, सच्ची पशेमानी खुदा को बहुत प्यारी है और खुदा खुश होता है पशेमान होने वाले पे, बख्श देता है। लेकिन एक बात जरूर है, हर अमल अच्छा हो गया या बुरा हो गया उसका रिएक्शन है, उसका बदला है। अल्लाह कहता है राई के दाने जितनी नेकी करोगे तो बर्बाद नहीं होगी, फिर कहता है कि राई के दाने जितना गुनाह करोगे जरूर सजा मिलेगी। मोमन जो है वो जानबूझ के गुनाह नहीं करता, और जो जो इबादत करता जाता है उसमें ऐसी ताकत पैदा होती जाती है कि अनजाने में भी गुनाह नहीं हो रहे, क्योंकि उसके हालात ऐसे बदल जाते हैं, आदत हो जाती है। तो इबादत में सबसे बड़ी जरूरी चीज हमारे नेक आमाल है, और आमाल नेक होने की वजह से दिल के अंदर जो मौला की मोहब्बत पैदा होती है, उस मोहब्बत की वजह से हमारी बैतुल ख्याल की इबादत हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा असर करती है। इस गिनान के अंदर जो मैंने पाठ बोला सखी मोहब्बत का, फिर कितने हैं, यानी अभी मैं आपको जो चीज कह रहा हूं कि जो जो इंसान पाक होता जाता है तो नूर का दर्जा और असर बढ़ता जाता है, और एक दिन यह होता है कि सारा कंप्लीट बदन उसका नूर के कब्जे में आ जाता है। हे सखी सगड़ा रोमे रोम के लागा जपवारे। जिस तरह जैसे जैसे पाक होते जाओगे नूर बढ़ता जाएगा और हमारे बदन में 3.5 करोड़ रोम हैं। हमको पीरों ने यह कहा कि हमारे बदन में 3.5 करोड़ रोम हैं। रोम जो है इसको इंग्लिश में पोर्स कहते हैं, PORES। हमारे बदन के अंदर छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सुराख है, यानी स्किन है, और उसके किनारे के ऊपर छोटा सा बाल है। वो इस आंख से नजर नहीं आएगा, चश्मे से भी नहीं, माइक्रोस्कोप से देखो तो सुराख के किनारे पे छोटा सा बाल है। इस बाल को रोंग कहते हैं, इसको उर्दू में रोंगटा कहते हैं। हमारे स्किन में 3.5 करोड़ का मतलब ये है 35 मिलियन रोम है। और फिर कहते हैं कि तेरे बदन के जितने भी रोम है ना, वो इमाम का जाप करेंगे, उसका नाम का विरद करेंगे, बेतुल ख्याल का बोल बोलेंगे, रोम रोम बोलेगा। तेरा एक एक रोम जो है वो नूर से भर जाएगा। फिर क्या होगा? त्यारे सगड़ा घटना चोर लागा छिपवारे, और तेरे घट के अंदर छुपे हुए जो चोर बैठे हैं, चोर यानी बदिया, भागते जाएंगे, भागने लगेंगे, और तुम पाक बनते जाओगे, बदनी तौर पे भी पाक बनोगे। हमारे पीरों के गिनन में है कि मौला को याद करोगे तो तुम्हारी देही निर्मल थाए, देही बदन निर्मल बने, पाक बने। एक मेहमानी थी, वो मेहमानी मिशनरियों की थी, उसमें टीचर्स वगैरह भी थे। धनी माँ बाप सुल्तान मोहम्मद शाह पूछते हैं, तुम्हारे में ऐसा है कि जो पाक है? अभी इमाम के हुजूर में बड़ाई करना तो पॉसिबल नहीं था, लोग चुप रहे। साहब ने फिर पूछा, तुम्हारे में कोई ऐसा है कि जो पाक है? एक आदमी खड़ा हुआ, खुदावर मैं पाक हूं। अच्छा, तुमने कभी गुनाह नहीं किया? खुदावर बहुत किए। तो सब हंस के कहते हैं, तुमने गुनाह भी बहुत किए और अभी भी तो मैं पाक हूं। खुदावर मैं पाक हूं, मैंने गुनाह बहुत किए हैं, लेकिन इस वक्त मैं पाक हूं। इस अदर दिन ने हमको ये कहा है। क्या कहा है? कि जिसने सतगुर की भेटना की, तेनी देही ते निर्मल था, मौला तेरा दीदार किया है, मैं इस वक्त पाक हूं। सब बहुत खुश हुए, सच कहते हो। लेकिन ये समझ होनी चाहिए कि मैंने मौला का दीदार किया, अब मेरी तमाम बदियां बुराइयां दूर हो गई। मजहब जो है वो नूर की चीज है, और हम इस्माइली बड़े खुश नसीब हैं कि जमाने का इमाम हमारे अंदर है। कोई मजहब में, कोई फिरके में, कोई तरीके में खुदा का नूर मौजूद नहीं है। यही एक है जो दावा करता है कि आम दी होल्ड ऑफ दी नूर ऑफ इमामत। इस मजहब का मजा चखो, इस मजहब से बरकतें लो, इस मजहब का फायदा लो, और वो फायदे दिल का सुकून और आखिरत आकबत की चीजें नजर आएंगी। कल क्या होने वाला है वो देख सकोगे, कैसे मेरी मौत होगी वो भी पता लग जाएगा, फिर मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा वो भी देख सकोगे। ये मजहब में ये चीजें मिलती हैं। लेकिन दुनिया की मोहब्बत इसमें, आजकल तो खास तौर पर पैसे की मोहब्बत बहुत, पैसे की मोहब्बत बहुत है। इसी को अल्लाह ताला ने कहा कि मैं शिर्क को कभी टॉलरेट नहीं करूंगा। शिर्क क्या है? कि जितनी खुदा को अजमत और मोहब्बत देनी चाहिए, हम इतनी अगर माल दौलत को देते हैं तो ये शिर्क है। हमने डॉलर को खुदा का दर्जा दे दिया है। डॉलर की खातिर गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, बदियां करते हैं डॉलर की खातिर। और ऐसा भी मैंने देखा है कि डॉलर की मोहब्बत में बाद में जेल में बैठे होते हैं, डॉलर की मोहब्बत के अंदर बदियां बनाइयां होती हैं, जिंदगियां खराब हो जाती हैं। तो हमें अगर बैतुल ख्याल में से कुछ लेना है, ये बादशाही लेनी है तो वो फकीरी लेनी पड़ेगी। और दुनिया की जो बादशाही है वो जिल्लत की चीज है, मजहब की फकीरी जो है वो अजमत की चीज है, बादशाही है, सच्ची बादशाही। और बादशाही जो है वो उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसके पास दुनिया का तख्त हो गए, बादशाही तो दिल में है। अखुद गुलाम था मौलाना अली शाह के जमाने में, इसकी हिस्ट्री में कभी कभी जमात के अंदर मुझे अभी इस वक्त अखुद याद आ गया, मेरा ख्याल है 8-10 बरस के बाद उसको याद किया मैंने। अखुद गुलाम अपने आप को इमाम की गुलामी में रखते थे, असल में वो ईरानी थे, ईरान के रहने वाले थे। हसन अली शाह माँ बाप के साथ उसके बाप दादा आए थे, बड़ा हुआ, रंग का जरा काला था, शॉर्ट फॉर्म थे, एक कपड़े थे, नहाते वक्त इन्हीं कपड़ों को वो धो डालते थे और गीले गीले कपड़े पहन लेते थे और बदन की गर्मी से वो सूख जाते थे। इमाम के घर का नौकर था। अली शाह माँ बाप के जमाने में भी घोड़े और सोल्जर वगैरह बहुत थे, तो कहीं वो नौकरी करते थे मौला के घर की। लेकिन अखुंद सच्चा फकीर दरवेश था, तनख्वाह मिलती थी, पहले तो 10 वन दे देंगे और फिर जो बाकी बच जाएंगे ना तो महीने के आखिर में वो सब कुछ छमाखाने में डाल देंगे, नवी तनख्वाह मिले उसमें से 10 वन दे के खावे, एक वक्त खाते थे। कभी कभी जमात में मुखी उनको कहे कुछ वाज करो तो वाज भी करते थे। बॉम्बे के दरखाने में वाज करने खड़े हुए, उनका मेन प्यारा टॉपिक दसवन था। अखुद गुलाम दसवन पे वाज करते हैं, वाज करते करते जरा जोश में आ गया, ए दिनदारो जो आदमी इमाम की बैत करके दसवन में नहीं देता या कम देता है, खा जाता है, तो कयामत के दिन उसका आधा मुंह काला होगा। अभी जमात के अंदर सब किस्म के लोग होते हैं, ये तो गरीब फकीर आदमी है, मालदार लोग जमात खाने में बैठे हुए हैं और अमूमन मालदार पूरी दसवन नहीं देते। ये तो रसूल अकरम के जमाने से चला, क्योंकि इतनी बड़ी रकम निकालना दिल नहीं, शायद थोड़ी सी दे देते। अखुन कहता है जो दसवन नहीं देता इमाम की बैत करने के बाद उसका कयामत में आधा मुंह काला हो, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। वो जो उस जमाने में काउंसलर वो नहीं थे लेकिन अमरदार वगैरह थे, मुखी ने कह दिया अखुन तेरा जमात खाना बंद। अरे भाई क्या गुनाह किया, ये कहा कि दसवन न देने वालों का आधा मुंह काला होगा। अखुन सादा सिंपल शख्स था, रोता था, अभी रहता था वाड़ी में जिसको आगा हॉल कहते हैं, वहां मौला के बंगले वहां थे और पिछले बैरक्स थी कि जहां नौकर चाकर रहते थे। तो इसी वाड़ी के अंदर इसकी भी एक कोठड़ी थी, तो उधर से खड़क से पांव से चलते चलते वाड़ी आया। अभी मुखी ने इसको कहा कि तेरा जमात खाना बंद। तो जमात खाने का मतलब क्या है, मौला का घर जमात खाना है। तो वाड़ी के अंदर गया नहीं, क्योंकि वाड़ी अंदर इमाम की मिल्कत है, मुखी ने मुझे बंद किया है, मैं अंदर कैसे जाऊं। तो बाहर एक इमली का दरख्त था, उसके नीचे कुछ पत्थर था, वहां बैठ गया, रोने लगा। तो कुछ लोग आए, अखुन थोड़ा खा लो, खाना बंद, पानी बंद और वक्त उस वक्त मौला अली शाह शहर में नहीं थे, पूना गए हुए थे। तीसरे दिन मौला पूना से आए, और वो जमाने के अंदर मोटर वगैरह नहीं थी, तो मौला घोड़ा गाड़ी में, चार घोड़े पूना से घोड़ा गाड़ी में आए। तीसरा दिन था, अखुन बैठा रो रहा है, तीन दिन से खाया नहीं, सोया नहीं, पिया नहीं। अलीशा मंगत लगी नजदीक आए, दरवाजे बंद थे तो घोड़े खड़े हुए, दरवाजे के खोलने का इंतजार कर रहा था कोच में। आखों खड़ा हुआ, उसको मालूम नहीं था कि मौला आ गए हैं। जब मौला ने पुकार की ना तो खड़ा हुआ, निगाह नीचे है, हाथ मांगते हैं, आखों हम तीन दिन सोया, हमने भी तीन दिन खाया, इतना कहते चले। इसने तीन दिन खाना नहीं खाया, मौला ने नहीं खाया, ये तीन दिन नहीं सोया, वो भी नहीं सोया। अभी समझ लो कि इसका क्या दर्जा होना चाहिए। अंदर मौला गए, मुखी कमरियों को बुलाया, आखुन को बुलाया, मुखी को पूछा क्या बात है सरकार, इसने ऐसा कहा। आखुन तूने ऐसा कहा, तुमने पूरी तरह बोले नहीं, तुमने आधी बात कही। मुखी को कहते हैं जो ये बैठ करके जो वसूल नहीं देता, अखुंद ने कहा आधा मुंह काला होगा, ये उसने आधी बात की, सारा मुंह काला होगा। बोला कहते हैं सारा मुंह काला होगा। मुखी भी माफी मांगी, अभी तक एक इसमें एक सीखने की बात है, इमाम मालिक है मगर गत का जो दर्जा है वो कितना है। मुखी अब तुम इसको माफ करो, अब तुम्हें माफ किया गया, माफी खुद नहीं दी, गत को कहा कि इसको माफ। इसलिए जब मैं हमेशा जमातों के अंदर जमात खाने की अजमत और गत की अजमत की बातें करता रहता हूं, जमात खाने की बहुत इज्जत करो। अगर जमात खाना खाली है तो भी ये गत है, क्योंकि ये इमाम का घर है। गत में जब आओ है जिंदा बुलाओ, फल अमरा पूरी पाओ, शापीर का दिन आओ। अखुन कितना नजदीक होगा, बच्चे ने नहीं खाया माँ कैसे खाएगी, बच्चा सो नहीं रहा माँ कैसे सो जाए। मंगना इस मंडली में आके, बैतुल ख्याल में आके अपने दिल को फकीर बनाओ, फकीर बनाओ, कि जिसको दुनिया की कोई परवाह लालच नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा कि जैसे फिर कहते हैं कि तुम्हारे बदन के सारे 3 करोड़ रोंगटे इबादत करें। बोले आपको तौफीक दे गए, इबादत का शौक दे गए, करने इबादत करने की ताकत दे गए। मौलाना हज़रत इमाम बदियों बुराइयों से बचा ले, नाफरमानी से बचा ले, जिन्हें दुनिया की बख्शिशें दे ले, शैतान और कलयुग की हवाओं से बचा ले, रस्म सुकृत में पूरा रखे। मौलाना हज़रत इमाम को आपकी आल औलाद को जिन्हें दुनिया के अंदर अपनी छत पर छाया में रखें। शुक्रिया।